created with free version for non-commercial use.
Ananjana Shalakaya Chakshurun Melitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Guruna Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padana Sahagana Lalita Sri Vishakhanavitam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Tantara
Created with free version for non-commercial use.
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Krishna Swagat hai aap sabka. To aaj se hum Brajamandal की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रवचन श्रृंखला का हमने नाम दिया है श्री ब्रजमंडल महिमा माधुर्य। ब्रजमंडल की जो महिमा है उसका वर्णन मुझ जैसा पामर नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिव्य धाम है जहां पे साक्षात भगवान प्रकट हुए और उन्होंने
created with free version for non-commercial use
जो आज तक हर एक प्राणी मात्र को, चाहे वो किसी भी धर्म का देश का हो, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये जो ब्रजमंडल है इसका नाम ब्रजमंडल क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक सुंदर कारण बताया जा रहा है। जैसे ब्रज और उत्तर प्रदेश में ज्यादा करके उसे ब्रज कहा जाता है, लेकिन संस्कृत शब्द है ब्रज। तो इस ब्रज शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ ऐसा है कि व्रजति गच्छति इति ब्रजः, अर्थात जो चलता फिरता है वही ब्रज। बछड़ो और परिवार तथा परिकरों के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास करते थे वह स्थान आज ब्रज के नाम से जाने जाते। और शास्त्र में कहा गया है ब्रजंदि गावा यस्मिन इति ब्रजहा, अर्थात जहां गो गोपाल गो और गोपिया विचरण करती है उसे ब्रज कहते हैं। और विशेष रूप से स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की विहार भूमि को ही ब्रज कहते। और इसी ब्रज भूमि में अखिल रसामृत मूर्ति ब्रज विहार श्री कृष्ण अपनी लाभिनी शक्ति स्वरूपा महाभाव स्वरूपा
created with free version for non-commercial use
भ्रमण करते हैं और इसीलिए उसको ब्रज कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 44वें अध्याय के 13वें श्लोक में बहुत ही सुंदर रूप से इस ब्रजमंडल का वर्णन किया गया है। वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वास्तवता में गोपिया कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है और वे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। वे कहते हैं पुण्यावत ब्रज भुवो यदयम् नृलिङ्गगूढा पुराण पुरुषो वन चित्र माल्या गापालयन सह बलान्नयंश वेणुं
विक्रीडितायाः
एक सखी दूसरी सखी को कहती है, हे सखी सच पूछो तो ब्रज भूमि ही पवित्र और परम पवित्र धाम और वे ब्रज भूमि धन्य है क्योंकि यहां है, यहां ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के वेश में छिपकर है। यहां पर बहुत ही सुंदर शब्द का उपयोग किया है शब्द गोस्वामी जी, वे कहते कि नृलिंग गूढ़ नृलिंग गूढ़ नृलिंग यानी लिंग यानी आकार रूप और मनुष्य जैसा रूप लेकर गूढ़ यानी गुह्य रूप से जो विचरण कर रहे हैं और कौन है वे पुराण पुरुषो वही वे पुराण पुरुष जैसे ब्रह्म संहिता
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
कि आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च भगवान का वर्तन वर्णन करते समय वे कहते हैं कि ये वे है जो आदि है और पुराण पुरुष है और फिर भी नव यौवन है, तो भगवान में सारे विरोधाभास सम्मिलित हो जाते हैं। तो गोपियां यहां कहते कहती है कि नृलिंग गूढ़ा पुराण पुरुषो और कैसे है वनचित्र माल्या जिन्होंने मनुष्य वेश में तो छिपकर है ही है और वन की जो विचित्र फूलों की माला है उन्होंने धारण की है। गा पालयन सह बलहा पंशश्च वेणुं विक्रीडयन्ति गिरिमत्रम आर्चित अंग्रिह, अरे जिनके चरणों की वंदना पूजा अर्चना ब्रह्मा शिव जैसे महान देवताएं
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
वही हमारे भगवान चित्र विचित्र मालाएं धारण करके अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ क्या कर रहे तथा गोप बालों के साथ गैया चरा रहे, और ये भूमि इसीलिए धन्य है क्योंकि यहाँ के हर कन कन में भगवान का चरण स्पर्श है। आज भी इस ब्रज भूमि में तीन वस्तुएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी है, एक तो है ब्रजरज जिन्होंने भगवान के पद चिन्हों को अंकित करके लिया, दूसरा है
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
और तीसरे है गिरिराज गोवर्धन। इन तीनों के संपर्क से ही, और इतना तो कहा गया है कि यमुना जी के दर्शन मात्र से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, यह ब्रज की महिमा है। और स्कंद पुराण में इस ब्रज शब्द की बहुत ही सुंदर परिभाषा की गई है, सारे पुराणों में इस ब्रज का वर्णन आता है, खास करके स्कंद पुराण में कहा है गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रजम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदम अव्ययम। यहां पे कहते हैं कि सत्व रजतम इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वह विश्व के कण कण में सर्वत्र व्याप्त है,
created with free version for non-commercial use.
यह सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है, जीवन मुक्त परम रसिक ही इसमें निवास करते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि बताया गया है कि ये ब्रज और भगवान श्री कृष्ण इनमें कोई अंतर नहीं है, वही वे जो गुणातीत परब्रह्म है वे ही ये ब्रज है, और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। अथा गोकुल ब्रज गोलोक तथा वृंदावन को पर्यायवाची माना गया है, वे कोई अलग नहीं है, बस एक ही है, वही गोकुल है, वही ब्रज है, वही गोलोक है और वही वृंदावन।
Created with free version for non-commercial use.
श्रीमान महाप्रभु के अंतरंग निजजन श्रीपाद श्रील रूप गोस्वामी पाद जो वे अपने श्री भागवतामृत नामक ग्रंथ में गोकुल गोलोक के संबंध में सब प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हुए लिखते हैं। वे कहते हैं कि यत्तु गोलोक नाम स्यात्तस्य गोकुल वैभवम् तादात्म्य वैभवम वश्च तस्य तन महिन्मते, अर्थात गोकुल का तादात्म वैभव ही गोलोक है, गोलोक गोकुल का वैभव मात्र ही है। इस प्रकार व्रज का नामांतर ही वृंदावन और गोकुल भी है। और जैसे पिछले महीने हमने ब्रह्म संहिता के ऊपर चर्चा की, ब्रह्मचर्य
ब्रह्म
गोकुल का इस व्रज का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम पदम तत्कर्णिकार तद्धामम तद अंतर अंश संभवम। इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं कि विरजा के उस पार अशोक अमृत और अभय रूप त्रिपाद विभूति स्वरूप महावैकुंठ या परम व्योम धाम नित्य अवस्थित है, उसके ऊपर अनंत चित विभूतियों से संपन्न परम माधुर्यमय गोकुल और गोलोक को अभिन्न मानकर कभी कभी गोलोक को ही गोकुल कहा जाता है। और वही ये गोलो
created with free version for non-commercial use
प्रकट हो जाता है। और श्री सनातन गोस्वामी पाद अपनी श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ में लिखते हैं कि यथा क्रीडति तत्भूमौ गोलोके अपि तथैव छः अथ ऊर्ध्वतया भेदो अनयोः कल्पते केवलम्। बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे बताते हैं कि प्रपंच स्थित गोकुल में श्री कृष्ण जैसी जैसी लीला करते हैं गोलोक में भी वैसी ही क्रीड़ाएं करते हैं, गोलोक और गोकुल में कोई भेद नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि एक सर्वोत्थ गोलोक के रूप में विराजित है और दूसरा भूलोक में गोलोक के रूप में गोकुल के रूप में प्रकटित। और शिल जीव गोस्वामी पाद इसी के संदर्भ में अपने कृष्ण संदर्भ में ग्रंथ में लिखते हैं
created with free version for non-commercial use
प्रकाश विशेषो गोलकत्वं तत्र प्रापंचिक लोक प्रकट लीला अवकाशत्वेन अवभासमानः प्रकाशो गोलोक इति समर्थनीयम्। और भक्ति विनोद ठाकुर भी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे श्लोक में कहते हैं कि परिकिया भावे अति रसेर उल्लास व्रज बिना नाही इहार अन्यत्र नाही वास। वे कहते हैं कि ये व्रज धाम परकीय रस से परिपूरित है और उसी रस का यहाँ पे उल्लास है। जब भगवान प्रपंच अवतार में यानी भौम वृंदावन में अपनी लीलाएं करते हैं तो यहाँ पे
created with free version for non-commercial use
ये भगवत धाम में हो नहीं सकती क्योंकि भगवत धाम में सब स्वकीय लीला है, वहां पे भगवान और सारी गोपियां इनमें स्वकीयता है। और परकीय रस का आस्वादन लेने के लिए स्वयं भगवान यहां पे आके इस भौम वृंदावन में इस व्रज में लीलाएं करते हैं। श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत आदि लीला के तीसरे अध्याय में कहते हैं कि अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापारेर शेषे ब्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाश। जब भगवान श्री कृष्ण विशेष करके जो 28वां दिव्य युग में इसमें द्वापार के अंत में जब स्वयं प्रकट होते हैं तो उसी समय उस ब्रज धाम को यहाँ पे लेके आते।
Created with free version for non-commercial use।
उसी गोलोक को यहाँ पे प्रकटित करते हैं ताकि वे यहाँ पे उनकी नित्य रूप से लीलाएं करें। और जैसे कि ब्रह्म संहिता में उस गोलोक का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही सुंदर है। 55 और 56 नंबर का श्लोक है, वहां पे वे कहते हैं श्रेयकांतः कांतः परम पुरुषः कल्पतरवो ध्रुवा भूमिश्चिन्तामणिगणमयितोऽयमृतम् कथा गानम नाट्यम गमनमभिवम चिं प्रियसखी चिरानन्दम ज्योति परमभितदास्वाद्यमपि च सयत्र क्षीराभिस्रवति सुरविभश्च च सुमहान् निमेषाधृक्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्विहि तद्वीपं तम अहं यगोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्ता क्षितिविरलचारा कतिपये। गोलोक वो धाम है जहां परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की एकमात्र कांत है। कांत यानी पति, तो वहां पे केवल स्वकीय रस है, परकीय रस नहीं। और उन्हीं के स्वरूप भूता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा व्रज गोपिया कांता स्वरूपा है, यानी पत्नी के रूप में, जहां की प्रत्येक तरुलता चिन्मय कल्पतरु भूमि चिंतामणि स्वरूप है, जलमात्र ही अमृत है, और जहां की बोली संगीत है, गान है, जहां का चलना ही नृत्य है।
Created with free version for non-commercial use।
और वंशी वहां पे प्रिय सखी है। प्रकाश चिदानंदमय है। और वहां पे करोड़ों करोड़ों सुरभि गायें हैं जिनके स्तनों से निरत दूध का स्त्रव हो रहा है, और उस दूध के कारण वहां पे मानो एक महासमुद्र, क्षीर का, दूध का एक महासमुद्र प्रवाहित हो रहा है। और वहां पे ना तो भूत है ना तो भविष्य है, केवल वर्तमान ही वर्तमान है। अखंड चिन्मय काल जहां नित्य वर्तमान कहलाता है, और निमेश का अर्ध समय भी भूतकाल को प्राप्त नहीं होता, यहां पे है ही नहीं भूतकाल।
और Created with free version for non-commercial use।
मैं ऐसे उस धाम को, उस श्वेत द्वीप धाम का मैं भजन करता, और इस जगत के विरले साधु ही केवल उस धाम का दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि ऋग्वेद की एक ऋचा में कहा गया है, तावाम वास्तुन्यवशीगमध्ये यत्र गावो भूरिशृंगा अयसाह अत्राह तद उर्गस्य वृन्नाः परम पदम भवति भाति भूरिः। अर्थात जहां बड़ी ही सुंदर सिंह वाली तथा बहुत से गुणों वाली गाय विचरण करती है, वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हुए उन गौओं का पालन करते हैं, वही व्रज वृंदावन।
Created with free version for non-commercial use।
श्रेष्ठतम धाम। और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्वयं गोपियां ही वृंदावन की महिमा का मंडन करते हैं, गुणगान करते हैं। वे कहती है, वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजल लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुम मनुमत्तमयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसान्वंतरवरतरान्य समस्त सत्वम। वे कहती है, अर्थात हे सखी,
Created with free version for non-commercial use.
पद्मों के चिन्हों से सुशोभित होकर अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति का विस्तार करते हैं। यहां मयूरगण श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर मानो मेघ गर्जना हो रही है, इस भाव में मत्त होकर नृत्य करते हैं और गोवर्धन के साणु देश में अनन्यान्य प्राणी इसे देखकर आनंदवत जड़वत हो जाते हैं। अतएव वृंदावन इस समय तो वैकुंठ से भी अधिक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। सखीरी, इस वृंदावन में यत्र यत्र सर्वत्र बेली जुही चमेली चंपक कदंब आदि षड ऋतुओं के विविध प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। उनका सौरभ दूर दूर तक भौरों को मधुपान करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। झुंड के झुंड भवरे इन पुष्पों का प्रमत्त होकर गुंजार करने लगते हैं। उनका यह गुंजार ऐसा प्रतीत होता है मानो वन देवी मधुपति कृष्ण का आगमन जानकर उनका अभिनंदन कर रही है। जो रसिक है, जो भगवान का रसिक भक्त है, जिसका मन पूरी तरह से भगवान में लग गया है, वो व्यक्ति इस प्रकार से व्रज का वर्णन कर सकता है। और यहां गोपियों के शब्दों से हमें मालूम पड़ता है कि कितना मन को आकर्षित करने वाला, कितना रम्य वर्णन यहां पे गोपियां कर रही है। और इसी रम्यता के कारण लघु भागवतामृत के अंत्य भाग में पहले अध्याय के
Created with free version for non-commercial use.
कहा गया है, वृंदावनं परित्यज्य स्वकचिन्नैव गच्छति। भगवान वृंदावन से एक पद भी निकलते नहीं, कहीं जाते ही नहीं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने हैं तो आप वृंदावन चले जाइए, वहां पे हर कण कण में भगवान का वास है। हालांकि हर जगह पे है, लेकिन वहां पे आपको निश्चित रूप से उसका साक्षात्कार हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये ब्रज की सीमाएं कहां तक है। गर्ग संहिता में इस 84 कोस ब्रजमंडल का भूभाग जो है उसका, उसके पूर्व में क्या
Created है, उसके पश्चिम में क्या, उसके दक्षिण
में क्या, उसमें उत्तर में क्या है, तो कहां तक उनकी सीमाएं फैली हुई है उसका बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। वहां पे कहते हैं, प्राग उदिच्छाम, यानी पूर्व की दिशा में बर्हिषदो, बर्हिषद यानी आज जिसको बरहद कहा जाता है, बरहद नाम का जो गांव है। फिर कहते हैं कि दक्षिणस्याम यदोपुरा, यदोपुरा यानी यदोपुर, जो शूरसेन का गांव है, आज जो बटेश्वर नाम से प्रख्यात है। और फिर दक्षिण पश्चिमाया शोणितपुरा, यानी दक्षिण से पश्चिम में शोणितपुर, सोनहद जिसको कहते हैं, जो सोना ध्यान आजकल हरियाणा में जो गुड़गांव
Created
जिला
with free
था
version for
उसमें
non-commercial
वो
use.
स्थित है सोनहत। और फिर कहते हैं माथुरम मंडलम विदुहो, तो इसका अर्थ ऐसा है कि एक ओर से बर यानी बरहर, दूसरी ओर से सोनहर, तीसरी ओर से बटेश्वर, बर नामक जो स्थान वर्तमान में अलीगढ़ जिले में है जो ब्रजमंडल के पूर्वोत्तर स्थित है, सोनहत जो वर्तमान हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले में स्थित है जो ब्रजमंडल के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, इसका प्राचीन नाम शोणितपुर था और शूरसेन का ग्राम जिसे बाह तहसील का बटेश्वर नाम का गांव कहा गया। तो इनके बीच में जो भूभाग है उसको ब्रजमंडल कहा गया है। और ब्रह्मांड पुराण में भी ब्रजमंडल की सीमा उल्लेख
Created with free version for non-commercial use.
बताया गया है। और उसमें तो जो ब्रज में अड़तालीस वन है उन वनों के साथ इनके नाम बताए गए हैं कि ब्रज में कितने वन है और कैसे है। तो कहते हैं यहाँ पे चतुर्लिक्ष प्रमाणेन पूर्वादि क्रमतो गणत पूर्व भागे स्थितम कोणम वनम हस्याभिधानकम भागे च दक्षिणे कोणम शुभम जनहु वनम स्थितम भागे च पश्चिमे कोणे पर्वताख्य वनम स्थितम भागे ह्यु उत्तरस्य कोणस्यम सूर्यपतन सज्ञकम इत्येता ब्रज मर्यादा चतुष्कोणा विधायिनी। तो यहां ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है
Created with free version for non-commercial use.
पूर्व में हस्य वन है, दक्षिण में जन्नू वन है, पश्चिम में पर्वत वन और उत्तर में सूर्यपतन वन स्थित है। और आज के स्थान विशेष के अनुसार अगर देखा जाए तो पूर्व में आगरा जिले का जो हसनगढ़ है वो हास्यवन के नाम से जाना जाता है, पश्चिम में राजस्थान का जो काम्यवन है उसके पास का जो बहाड़ी ग्राम है वो पर्वत वन के नाम से जाना जाता था, और दक्षिण में धौलपुर तहसील का जाजू ग्राम जो है वो जन्नू के नाम से प्रसिद्ध था, जो जन्नू वन था, और उत्तर भाग में अलीगढ़ जिले के जेवर नाम के निकट सूर्यपत्तन वन की स्थिति मानी गई। और इसी प्रकार से पद्म पुराण में भी 84 कोस ब्रजमंडल में वन उपवन प्रतिवन और अधिवन कुल मिलाकर
Created
अड़तीस
with
वन
free
है।
version for non-commercial
और
use.
पद्म पुराण के अनुसार यमुना जी के पूर्व और पश्चिम में महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भंडीरवन, वृंदावन, खदीरवन, लोहवन, भद्रवन, बहुलावन और बेलवन यह 12 मुख्य वन स्थित है। तो इसमें से यमुना जी के पश्चिम और पूर्व भाग में अलग अलग वन स्थित है। तो इसमें से मधुवन है, तालवन है, कुमुदवन है, बहुलावन है, काम्यवन है, खदीरवन है और वृंदावन ये यमुना जी के पश्चिम तट पे है या पश्चिम भूभाग में है। और भद्रवन, भांडीरवन, विवलवन, बेलवन, लोहवन और महावन ये पांच वन यमुना के पूर्व में स्थित है। फिर वराह पुराण में
Created
भी
with free
12
version for
वनों का
non-commercial
वर्णन
use.
किया गया है और वहां पे कहते हैं कि ब्रह्मवन, अप्सरावन, विवलवन, कदम्बवन, स्वर्णवन, सुरभिवन, प्रेमवन, मयूरवन, माने मातिंगित वन, शेषशायी वन, नारद वन और परमानंद वन। फिर भविष्य पुराण में और 12 वनों का 12 जो प्रतिवन है, माफ कीजिए, वराह पुराण में 12 उपवनों का वर्णन किया है, फिर भविष्य पुराण में 12 प्रतिवनों का वर्णन है, जैसे कि रंगवन है, वार्तावन है, करहावन है, कामवन है, अंजन वन है, कर्णन वन है, कृष्णाक्षी पणवन है, फिर नंद प्रेक्षण कृष्ण वन है, इंद्र वन है, शिक्षा वन है, चंद्रावली वन है, लोह वन है, और फिर विष्णु पुराण में 12 आदिवनों का वर्णन है, जिसमें है मथुरा, नंदगांव, गढ़, ललिताग्राम, वृषभानुपुर, गोकुल, बलभद्रवन, गोवर्धन, जावट, वृंदावन और संकेत वन, और ऐसे कुल मिला के 48 वन इस पूरे ब्रजमंडल में स्थित है। तो इन 48 वनों का जो सुंदर वर्णन शास्त्रों में किया गया है, और उन वनों में भगवान ने जो सुंदर लीलाएं की है, उन लीलाओं को अगर हमें जानना है, उन लीलाओं का अगर हमें आस्वादन करना है, तो हम आपसे विनती करते हैं कि अगले 30 दिन हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम इस हर एक कोने कोने तक, हर एक चप्पे चप्पे में घूमेंगे, क्योंकि अभी ये कोरोना महामारी के कारण घर के बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन भगवत कृपा से और इस फेसबुक की कृपा से, समझो इस फेसबुक या डिजिटल मीडिया के द्वारा, हम घर में बैठे बैठे ही भगवान के इस दिव्य धाम का दर्शन कर सकते हैं। तो आज तो हमने केवल चर्चा की कि ये ब्रज क्या है, तो कल से हम इस ब्रजमंडल के एक एक स्थान विशेष में भगवान ने जो सुंदर लीलाएं की है, उन लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको उन स्थानों के कुछ चलचित्र या चित्र भी दिखाएंगे, जिससे आप घर में बैठे बैठे ही उस स्थान का दर्शन कर सकते।
Created with free version for non-commercial use.
तो कल हम चर्चा करेंगे मथुरापुरी के बारे में। शास्त्रों में 7 पुरियां बताई गई है जो मोक्षदायिनी है, तो उसमें से सबसे पहली पुरी जो है वही है मथुरा। मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैदा मोक्षदायिका, ये 7 मोक्ष प्रदान करने वाली है, लेकिन इन 7 में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ मथुरा पुरी कैसी है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, और इस सुंदर
Created with free version for non-commercial use.
मास में, जो कि गुर्जा व्रत भी कहा जाता है, और विशेष करके जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों का या पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और विशेष करके इस गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने ही ब्रजमंडल परिक्रमा की शुरुआत की। आज से 528 या 32 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधरती पर अवतरित हुए थे, तो उन्होंने ही वज्रनाभ जी के पश्चात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने ही इस ब्रजभूमि का प्राकट्य किया, भगवान के सारे लीला स्थलियों का प्राकट्य किया। अगर महाप्रभु नहीं आते तो आप और हम ब्रजमंडल की चर्चा नहीं कर पाते, और उनके ही जो शिष्य है श्रीपाद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हालांकि महाप्रभु के पहले भी अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये आए थे वृंदावन ब्रज में, लेकिन ब्रजमंडल के परिक्रमा की शुरुआत स्वयं महाप्रभु ने की, तो उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए आज भी गौड़ीय संप्रदाय के भक्त आज के दिन से, जो कि आज की पाशांकुश एकादशी है, उसी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग पाशांकुश एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक करते हैं, कुछ लोग अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, इन 30 दिनों में
created with free version for non-commercial use.
या ऊर्जा व्रत मास कहते हैं, जिसमें श्रीमती राधारानी को जो अति प्रिय मास है, इस मास में वे इस ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। तो आइए हर रोज हम उस ब्रजमंडल की परिक्रमा उस दिन विशेष के साथ, जैसे आज से शुरुआत हो गई, तो आज से कौन से अलग अलग स्थान है जहां पे भक्त लोग घूमते हैं, हर रोज चलते हैं, ये पूरी परिक्रमा करने के लिए 500 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। तो भगवत कृपा से आपको बिना चले हुए एक ही जगह पर बैठ के इस 84 कोस परिक्रमा का लाभ मिलने वाला है। तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें भगवान से कि इन सुंदर दिव्य धामों के और धामों के साथ साथ भगवान के लीलाओं का वर्णन हम अपनी इस वाणी से कर पाए। भगवान की ऐसी असीम कृपा हम पे बनी रहे।
Created with free version for non-commercial use.
और कल से हम फिर इस मथुरा मंडल के लीलाओं की लीलाओं का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय।
Created with free version for non-commercial use.